माधवं कुंज बिहारी जय राधा माधवं कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ शिवरतारी गिरिवरदारी जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरदारी जय नवल्लभ गिरिवरदारी यशोदानंदन व्रज जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जयो राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहार हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Radha Damodara Radha Damodara Radha Damodara प्रभुपाद की जय श्रीराध दामोदर की जय श्रीराध दामोदर की जय कार्तिक मंथ की जय श्री दामोदर अष्टकम की जय। सब लोग फिर से वैसा बैठे, कथा सुनते समय कोई प्रॉब्लम नहीं, आप चिंता मत करें, भगवान को पीठ भी लगेगा कोई दिक्कत नहीं। सब लोग आगे आइए। और विजय प्रभु आप सोफे के ऊपर बैठिए, आप भी सोफे के ऊपर बैठे। सोफा में चार लोग बैठेंगे तो नीचे जगह मिलेगा, बाद में लोग आएंगे तो बीच में डिस्टर्ब होगा। हाँ इधर बैठ जाओ,
आपके पास ही।
हाँ इधर बैठ जाओ, सब आ जाइए, आगे आ जाओ। फिर क्या है, बीच में पीछे से कोई आएंगे तो फिर डिस्टर्ब होगा, है ना। तो पीछे जितना जगह छोड़े रहेंगे उतना अच्छा है।
उधर आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, काफी जगह।
चलिए सभी लोग मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर आ जाइए, इधर भी जगह,
इधर
इधर आ जाइए। पीछे पीछे जगह छोड़ना है, पीछे जगह छोड़ना है इसलिए क्योंकि लोग आएंगे तो कहाँ बैठेंगे। आपको लोगों की सेवा करना है ना, इसलिए उनके लिए जगह छोड़ के रखिए। इधर भी आ जाइए,
प्रैक्टिस
करें। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तदाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना ब्रज वधूं। वर्गे नया कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममालम् प्रेमापुमार्थो महां श्रीचैतन्य महाप्रभुर् मतमिदं तत्रादरो न परं श्रीचैतन्य महाप्रभुर् मतमिदं तत्रादरो न परं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी भक्तों का भरत प्रभु के घर में। भरत प्रभु के घर में सभी का स्वागत है। तो बहुत सुंदर सा महीना चल रहा है। कौन सा महीना चल रहा है?
कार्तिक।
हम इस कार्तिक मंथ में क्या कर रहे हैं? देवदान उत्सव कर रहे हैं। तो बहुत सुंदर उत्सव हम मना रहे हैं पिछले कई दिनों से। और अष्टकम कहाँ गया लाई? वो बंगाली में भी लाया हूँ, आज गुजराती में भी लाया हूँ, उड़िया में भी लाया हूँ और तमिल में भी लाया हूँ। प्रेम निकाल के इंग्लिश में भी चाहिए था क्या? अरे वो तो मेन चीज भूल गया है इंग्लिश। लाइए मुझे मुझे एक हिंदी वाला दे दीजिए, उसमें से दे दीजिए हिंदी वाला। क्या मुझे एक हिंदी तो दे दो, बैठ जाओ। है बहुत सारा है प्रिंट, हिंदी तो सबसे ज्यादा प्रिंट है। पूरा हिंदी ही है वो। ठीक है अभी चलिए ध्यान दीजिए, नहीं तो जितना लेट करेंगे उतना लेट होगा। चलिए चलिए वो लास्ट में लगेगा आप लोग को, मुझे पहले लगता था आपको लास्ट में लगेगा, है ना। तो सब लोग ध्यान दीजिए, माता जी सब लोग बच्चों सब शांत बैठो, कोई आवाज नहीं करना चाहिए। तो सुंदर कार्तिक महीना हम इस दामोदर अष्टकम के ऊपर विशेषतः हम चर्चा कर रहे हैं। विशेषकर भगवान के इन बाल लीलाओं के ऊपर हम काफी हम देख रहे थे कि दो पिछले कई दिनों से हम उनकी कितनी सुंदर सुंदर बाल लीलाएं भगवान कृष्ण ने किया, मधुर से मधुर मन को मोहित करने वाली लीलाएं किया भगवान ने। वास्तव में भगवान का एक नाम है मनमोहन, सभी के मन को आकर्षित करने वाले, इसलिए उनका नाम पड़ा मनमोहन। तो हमने क्या देखा अभी, ये अष्टकम किसने रचना किया है? सत्यव्रत मुनि ने, याद कर लीजिए इसको। सत्यव्रत मुनि ने अष्टकम की रचना किया और हमने कहां तक अभी तक कर लिया है? पांच कंप्लीट किया है हमने। क्या देखा पिछले एपिसोड में? पिछले एपिसोड में क्या देखा हमने? बाल सबको, सब फैशन मारने वाले लोग हैं इसलिए सबको याद है। वही याद है। तो भगवान का कितना सुंदर रूप का हमने कल चर्चा किया और विशेष करके जब
सत्यव्रत मुनि ने कुछ मांगना भगवान से चालू किया तो सबसे पहले तो वो बाल गोपाल रूप हमारे मन में बैठे, लेकिन लोभ बढ़ा तो उससे भी बड़ी चीज क्या मांग लिए कि आपका जो ये यशोदा मैया के द्वारा चुंबित जो रूप है ये मुखारविंद ये हमारे मन में आके बैठ जाए। तो इस प्रकार से हमने देखा कल के सत्यव्रत मुनि क्या बोल रहे हैं कि प्रभु आकर आप हमारे मन में हमारे हृदय में आकर बैठ जाइए, ये प्रार्थना करते हुए कल हमने श्लोक में देखा। और यह भी सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि इसके अलावा मुझे और किसी भी लाभ की जरूरत नहीं है, कोई भी मेरी इच्छा नहीं है। और इस संसार के कितने भी सुख लाभ जो लोग प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, मुझे वो सारे चीजें प्राप्त करने की इच्छा नहीं है। वास्तव में अगर हम देखें तो जब भगवान हमारे पास आ जाते हैं या जब हम भगवान को अपने घर में बुला लेते हैं तो उस व्यक्ति के लिए कोई चिंता का विषय नहीं रहता एक्चुअली, और उस व्यक्ति के घर में कोई क्लेश भी नहीं रह जाता है। हमने महाभारत के युद्ध में हम देखेंगे कि जब ये महाभारत का युद्ध तय हो गया कि अभी होना ही होना है, अभी बच नहीं सकते, इसे तय हो गया, तो उस समय दुर्योधन भगवान कृष्ण के पास गया, क्योंकि द्वारका में भगवान के पास बहुत बड़ी सेना थी ना, द्वारका में राज कर रहे थे भगवान, तो बड़ी सेना थी, हेल्प मदद मांगने के लिए गया कि मेरे तरफ से आप युद्ध करिए आप। तो दुर्योधन भगवान के पास गया। अभी इधर युधिष्ठिर महाराज भी अर्जुन को भेजो कि जाओ कृष्ण की सहायता मांगो, कृष्ण का मदद मांगो। तो दोनों निकले, पहले दुर्योधन निकला और उस समय जब द्वारका पहुंचा तो भगवान रेस्ट कर रहे थे, शयन कर रहे थे। तो उस समय दुर्योधन जाके सोचा कि ठीक है थोड़ा वेट करते हैं, जाके भगवान के सर के पास बैठ गया कि उठेंगे तो मैं मांगूंगा। उसके बाद अर्जुन भी कुछ देर के बाद पहुंचा और तभी भी भगवान सहन नहीं कर रहे थे और अर्जुन भगवान के चरण कमल में जाकर बैठा। और जब भगवान की निद्रा जब खुली तो सबसे पहले किसको देखा? अर्जुन को। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में बैठा हुआ था। और भगवान जैसे ही उठे तो अर्जुन को पहले देखे और दुर्योधन सर के पास बैठा हुआ था। दुर्योधन बोला कि प्रभु मैं पहले आया हूं, क्योंकि कृष्ण क्या कि अर्जुन का हालचाल पूछने लगे कैसे आना हुआ। तो उधर दुर्योधन तो तड़फड़ाने लगा, बोला कि मैं पहले आया, क्योंकि उसको चिंता थी, क्योंकि भगवान का जो सेना था ना उसको चाहिए था, भगवान की इतनी बड़ी सेना जो थी ना वो चाहिए था दुर्योधन, इसी आशा से लेकर यही आशा लेकर वो आया था। तो कहीं भगवान वो सेना अर्जुन को न दे दे इसलिए उसको चिंता होने लगी। तो कृष्ण ने बताया कि तुम चिंता मत करो, देखो मेरी नजर जो है ना पहले अर्जुन के ऊपर, और वैसे भी अर्जुन तुमसे छोटा है, छोटा है इसलिए मैं उसको पहले चांस दूंगा कि वो क्या मांगना चाहता है मुझसे। तो दुर्योधन के मन में तो बहुत तड़पड़ाहट हो रही थी कहीं वो सेना ना मांग ले भगवान की। तो लेकिन अर्जुन जब मांगना प्रारंभ किया भगवान से, भगवान को बोला कि प्रभु युद्ध होना तय हो चुका है, मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ रहिए। अभी दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया। अर्जुन ने क्या मांगा? आप मेरे साथ रहिएगा। तो कृष्ण ने बोला कि अर्जुन मेरी बड़ी बड़ी सेना, इतनी बड़ी सेना है मेरी, उस सेना को ले लो, मेरे को लेके क्या करोगे? और वैसे भी मैं युद्ध में क्या करूंगा, मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा नहीं। तो लाख बताने के बाद अर्जुन ने चॉइस क्या किया? नहीं प्रभु आप मेरे साथ रहिए। अभी अर्जुन दुर्योधन को मौका दिया। तो दुर्योधन तो तुरंत बोला प्रभु आपकी मुझे सेना चाहिए, आप मुझे अपनी सेना दे दीजिए। तो पूरी जो नारायणी सेना थी भगवान की वो सब दुर्योधन को दे दिया और अर्जुन के साथ भगवान स्वयं उनके सारथी बनना पसंद किए और वहां पे आए। और आप देखेंगे कि अर्जुन ने जो भगवान को मांग लिया ना, अर्जुन के पास कोई ताकत नहीं था उन सेनाओं को पराजित करने के लिए, कौरवों को कोई ताकत नहीं था, लेकिन भगवान को मांग लिया अर्जुन ने, तो क्या किया वो इतने बड़े महाभारत के युद्ध पे विजय प्राप्त हो गया, उसको निश्चिंत हो गए ये पांडवगण, निश्चिंत हो गए। जैसे ही ये अपने जीवन में कृष्ण को रखा ना, भगवान को रखा ना, वो निश्चिंत हो गए, बिल्कुल निश्चिंत हो गए। उस समय की बात है कि जब ये महाभारत का युद्ध का आठवां दिन समाप्त हुआ, आठ दिन तक युद्ध में कोई भी नहीं मारा गया, कोई भी नहीं मारा गया, और सेनापति कौन थे? भीष्म पितामह सेनापति थे कौरवों की तरफ से। तो कोई भी नहीं मारा गया। आठवें दिन के रात्रि के समय सब लोग अपने अपने, रात को युद्ध नहीं होता था, हालांकि फिर दसवें दिन के बाद नियम भी भंग होने लगा। जब भीष्म पितामह ने शरीर त्यागा उसके बाद से तो बहुत सारे नियम को भंग होने लगा युद्ध का। लेकिन आठवें दिन जब युद्ध की समाप्ति हुई और संध्या समय जैसे ही सूर्यास्त हुआ, युद्ध बंद हुआ, सब लोग अपने अपने शिविर में जाके आराम करने, रात्रि भर आराम करते थे, तब पितामह भीष्म भी अपने शिविर में चले गए। और उस समय दुर्योधन आया भीष्म पितामह के पास, रात्रि के समय आया, 10-11-12 बज रहे थे। पितामह भीष्म के शिविर में आया और पितामह भीष्म को बोलने लगा कि पितामह, 8 दिन युद्ध का समापन हो चुका, अभी तक कोई भी मारा नहीं गया, आप क्या कर रहे हो? आप हमारे सेना के सेनापति हो आप, और मुझे पता है कि आप सक्षम हो, आप सक्षम हो, ये जो पांडवों की सेना को अकेले मारने में सक्षम हो आप, इतना बड़ा ताकत है आपके पास, लेकिन पितामह भीष्म आप अभी भी क्या कर रहे हो? पांडवों से प्रेम दिखा रहे हो, अभी तक कोई नहीं मारा गया पांडवों में से, आप प्रेम दिखा रहे हो। पितामह भीष्म को कोसने लगा दुर्योधन, कोसने लगा कि आप नरक नमक हरामी कर रहे हो, जिस थाली में खाते हो उसी में सेत कर रहे हो, इस प्रकार से कठोर कठोर शब्द पितामह भीष्म को कौन बोलने लगा? दुर्योधन बोलने लगा, मैंने अपने सेना का सेनापति आपको बनाया, इसलिए बनाया क्योंकि आप पांडवों को मारो, लेकिन अभी तक कोई पांडवों में से एक भी मारा नहीं गया, इसका मतलब आपका स्नेह उनके प्रति जा नहीं रहा है, आप नमक हरामी करो। जैसे ही ये कठोर शब्द को अपनाया दुर्योधन ने, तुरंत पितामह भीष्म बोला कि युवराज बस करो, चुप रहो, एक शब्द भी अभी आगे मत बोलना, अभी तुम्हारी ऐसी तुम ऐसी सोच है ना, तो जाओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि कल के युद्ध में पांडवों में से किसी एक को मैं मार डालूंगा। पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा सोचिए, पितामह भीष्म क्षत्रिय है, क्षत्रिय का खून, एक बार प्रतिज्ञा कर लिए तो कार्य करके रहते थे, एक बार प्रतिज्ञा कर लिया कि जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे अपने पिता के लिए, इतनी बड़ी प्रतिज्ञा किया और जीवन भर निभाया उन्होंने। आज पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा क्या कर लिया? कल के युद्ध में पांडवों में से किसी एक को मैं मार डालूंगा, और जाओ दुर्योधन, तुम अपनी पत्नी को सुबह भेज देना, मैं उसको अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारी पत्नी को वरदान दे दूंगा, तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम नहीं मारे जाओगे। इस प्रकार से पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा रात को 12 बजे, 11-12 बजे रात्रि को प्रतिज्ञा हुआ। अभी जैसे ही पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा किया, तुरंत ही कृष्ण सोच में पड़ गए, अब क्या करना, क्योंकि पितामह भीष्म कोई आम व्यक्ति प्रतिज्ञा नहीं लिया है, पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया, और कृष्ण को भी मालूम था पितामह भीष्म ने जो प्रतिज्ञा लिया वो करके छोड़ेंगे। कृष्ण को जैसे ही पता चला, कैसे पता चला? वेदाहम समतीतानि, सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बैठे हुए, हृदय तिष्ठति, भगवान को जैसे ही पता चला, रात को 12 बजे वो कहां गए? पांडवों के शिविर में गए, और पांडव उस समय निश्चिंत होकर सो रहे थे, सब रेस्ट कर रहे थे, जाके उठाने लगे, अर्जुन उठो, युधिष्ठिर उठो, नकुल उठो, सहदेव उठो, इस प्रकार से चिल्लाने लगे। और जैसे ही कृष्ण इस प्रकार से चिल्लाने लगे, सब लोग डर गए, रात को 12 बजे क्या हो गया? तुरंत सब उठ गए पांडवगढ़ उठ गए और बोले, अर्जुन बोले कि क्या हुआ केशव, क्या हुआ, आप इतना क्यों चिंतित क्यों हो इतना? तो उस समय भगवान ने बोला कि बहुत बड़ी चिंता हो गई, क्योंकि पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया है। क्या प्रतिज्ञा लिया है? प्रतिज्ञा ये लिया है कि कल के युद्ध में तुम लोग में से कोई एक मारा जाएगा, ये प्रतिज्ञा ले लिया है। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज बोलने लगे कि एक केशव, कल का कल देखा जाएगा, अभी सोने दो ना, कल अरे ब्रह्मा जी की सृष्टि में से कोई एक मारा भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है केशव, आप निश्चिंत होके आप भी जाओ और हमको भी सोने दो, कल युद्ध करना है, कल का कल देखेंगे, क्यों इतना आप चिंता कर रहे हो? अभी देखिए बिल्कुल कृष्ण को ये भक्तों ने चिंता में डाला, उधर प्रतिज्ञा भीष्म ने लिया, वो भी कृष्ण के महान भक्त, उसने प्रतिज्ञा लिया इसको मारेंगे, और यहां पे आए उनको बताने के लिए, तो इनको कोई चिंता ही नहीं। विचार करिए कि उनको ये पांडवगण कल मरने वाले, कोई एक कल मरने वाले उनको पता है, क्योंकि उनको भी पता है पिता भीष्म ने जो प्रतिज्ञा किया वो पूरा होगा, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं, कल मरने वाले कोई चिंता नहीं। और आज का मनुष्य दिन भर चिंता में लगा रहता है, दिन भर चिंता में लगा रहता है। शाम को अगर वो अपने ऑफिस से घर पे आता है तो ऐसा लगता है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे देश का टेंशन उसी के सर पे दे दिया है। दो बच्चों, पत्नी चार, एक पत्नी चार बच्चों का पालन करने के लिए कितनी बड़ी टेंशन होता है, कितना बड़ा चिंता में व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे कृष्ण पांडवों को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि कल तुम में से कोई एक मरने वाला है, लेकिन उनको कोई चिंता नहीं है, चिंता नहीं है। और भेज दिया कृष्ण, अब जाइए सोने दीजिए, आराम करने दीजिए, कल का कल देखेंगे। कृष्ण बड़े सोच में पड़े, वहां से निकलने लगे। लेकिन पांडवगढ़ सोते सोते एक बात को अर्जुन उठ के एक बात को कहा, कृष्ण एक बात को उठ के, जैसे ना बिस्तर में सोए फिर उठ के तुरंत एक बात को कहने, तुरंत एक बात को कृष्ण को कहा, कृष्ण रुको, देखो हम तो कल मरने वाले हैं, हमको कोई चिंता नहीं है, ये सत्य है। लेकिन अगर कल हम, कल के युद्ध में हम मारे गए ना, हम मारे गए तो नाम आपका खराब होगा, क्योंकि कल के समाचार में, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आएगा कि कृष्ण के भक्त थे मारे गए। आपको अपनी नाम की चिंता है तो आप देख लीजिएगा, बैठिए ना, आपको अपनी नाम की चिंता है, आपका नाम ना खराब हो तो आप देख लीजिएगा, हमको तो कोई समस्या नहीं, हमने तो अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है और हम निश्चिंत हो गए, आप देख लीजिए क्या करना। बिल्कुल फंसा दिया भक्तों ने, आज दो भक्तों ने भगवान को बिल्कुल बीच में फंसा दिया। अब क्या करे भगवान, भगवान ने रात को 12 बजे इन पांडवों को उठाया था, पांडव तो निश्चिंत होकर सो गए। अभी भगवान विचार करने लगे क्या करें, उधर भीष्म की प्रतिज्ञा की रक्षा करना है, उसने प्रतिज्ञा लिया है उसकी भी रक्षा करना, क्योंकि वो भी भक्त है उनका, इधर इनको बचाना भी है। अब भगवान क्या करे, बड़े असमंजस में पड़े और बहुत विचार करते 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 सुबह का 4 बज गया, सुबह के 4 बजे। और सुबह के 4 बजे उन्होंने एक प्लान बनाया, इतनी देर तक विचार करके एक प्लान बनाया और द्रौपदी के शिविर में गए, द्रौपदी के पास गए और उठाए कि बहना उठो, हे द्रौपदी उठो। तुरंत उसको उठाए, ब्रह्म मुहूर्त का समय था, द्रौपदी भी उठी, बोले क्या हुआ भैया, तो बोले देखो बहुत बड़ी समस्या हो गई है, एक काम करो, तुम्हारा मदद चाहिए मुझे। बोले क्या मदद चाहिए, बोले चलो मेरे साथ। तुरंत द्रौपदी को लेके गए कृष्ण, द्रौपदी को लेके गए कहां पे, विश्वामित्र भीष्म के शिविर में जा रहे हैं लेकर। तो द्रौपदी पूछ रहे भैया बताओ क्या काम है, कुछ तो बताओ। बोले कि नहीं मैंने कुछ प्लान बनाया, वो देखो बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, वो तुमसे ही टल सकता है इस प्रकार का। लेकिन द्रौपदी बार बार पूछ रहे भैया कि क्या क्या एग्जैक्ट बताओ तो क्या प्रॉब्लम हुआ है, मैं बस मेरे साथ चलो, तुम कुछ प्रश्न मत करो, अभी टाइम नहीं है। बिल्कुल लेके गए पितामह भीष्म के शिविर के गेट पे जाकर खड़े हो गए और उसमें द्रौपदी को बोले कि अपना घूंघट जो है डाल लो, पर्दा डाल लो, क्या करना है। बोले अंदर पितामह भीष्म अभी साधना में बैठे होंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, साधना में बैठे होंगे, तुमको जाके कल उनको प्रणाम करना। द्रौपदी बोले भैया यही करना था, ये कल तो एक कार्य तो मैं कल भी कर सकती थी, काहे के लिए भुगत कर मुझे इतना जल्दी जगाया। बोले तुम बिल्कुल सोचो मत, देखो मेरा कुछ प्लान बनाया हो मैंने, तुम एक काम करो जाके कल प्रणाम करके आओ। द्रौपदी बोले ठीक है चलो, अभी जगी गई तो प्रणाम कर ही लेती हो। जा रही थी शिविर में, फिर से रोके, रुको चप्पल निकाल दो बाहर, चप्पल निकाल दिया, क्योंकि बिल्कुल आवाज नहीं आना चाहिए, चप्पल निकाल के जाओ, चप्पल निकाल दिया बाहर और अंदर गई द्रौपदी। और उस समय पितामह भीष्म योग साधना में बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे पितामह भीष्म, उसी समय द्रौपदी आई और पितामह भीष्म को प्रणाम किया और पितामह भीष्म को संभ्रम हुआ कि कल मैं दुर्योधन को बोला था अपनी पत्नी को भेज देना, मैं क्या करूंगा उसको वरदान दे दूंगा, अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे दूंगा। तो पितामह भीष्म को संभ्रम हुआ कि दुर्योधन की पत्नी आई होगी, इसलिए योग साधना में बैठे बैठे उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान दे दिया। अब बताओ, और जैसे ही उनकी आंख खुली उन्होंने क्या देखा, द्रौपदी। तब तो बड़ा बड़ा चिंतित में पड़े, लेकिन तुरंत समझ गए, क्योंकि भक्त थे भगवान के, तुरंत समझ गए ये और किसी का कार्य होगा नहीं। तुरंत वो खड़े हो गए उठकर और बाहर निकल के देखे तो बाहर कृष्ण खड़े हैं, द्रौपदी के दोनों चप्पल को इधर दबा के कृष्ण खड़े हैं कि अब बताओ पितामह भीष्म किसकी रक्षा करो, कौन सी प्रतिज्ञा की आप रक्षा करोगे। अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करोगे, यहाँ यहाँ पे अखंड सौभाग्यवती का वरदान दियो इसकी रक्षा करोगे? बताओ कौन सी प्रतिज्ञा रक्षा करोगे? क्योंकि दुर्योधन को क्या दिया, कल के युद्ध में मैं मारूंगा, अभी इधर क्या है अखंड सौभाग्यवती का वरदान द्रौपदी को दिया, मतलब पांचों पांडवों को भी नहीं मारना है, दोनों चीजें हो गया। तो कृष्ण बोलने लगे बताइए अब क्या करोगे? तो पितामह भीष्म बोले कि हे केशव मुझे पता था कि तुम इस प्रकार का कुछ करेगा, ठीक है मेरी प्रतिज्ञा का तुम छोड़ दो, मेरी प्रतिज्ञा का छोड़ दो, लेकिन मैं अभी एक और प्रतिज्ञा लेता हूं कि कल के युद्ध में तुमसे मैं अस्त्र शस्त्र को तुम्हारे हाथ में धारण करूंगा, तुम्हारी प्रतिज्ञा को मैं तोड़ दूंगा। तुमने जो प्रतिज्ञा लेकर रखा है ना, कल के युद्ध में शस्त्र नहीं, युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे, कल एक तुम्हारी प्रतिज्ञा को मैं निश्चित तोड़ दूंगा, ये मैं प्रतिज्ञा करता हूं। अभी अभी क्या हुआ, दूसरे दिन का महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। आज पितामह भीष्म का जो रूप था महाभारत के नवे दिन जो रूप था ना, इतना भयंकर रूप था, इतना तीव्र गति से वो अर्जुन का पीछा करते हुए और अर्जुन का सामना कर रहे हैं, और इतनी तीव्र गति से वो बाणों को मार रहे हैं, अपने तर्कस से जब बाणों को निकाल रहे हैं ना, बिल्कुल वो एकदम पंखे की तरह चल रहा है, इतना तेजी से तीव्र गति से निकाल रहे हैं। आज उनके सामने अर्जुन टिक नहीं पा रहा है इतने, क्योंकि एक ही उद्देश्य है मारना, क्योंकि प्रतिज्ञा लिया है उन्होंने एक उद्देश्य से, और उसके बाद अर्जुन इतना परेशान होने लगा, इतना परेशान होने लगा अर्जुन, पूरे वर्णन है कि महाभारत के 18 दिन के युद्ध में अर्जुन को कभी पसीना नहीं आया था, लेकिन आज के दिन पे जब पितामह भीष्म से युद्ध करना प्रारंभ किया था, अर्जुन के पसीने आ गए, और बिल्कुल अर्जुन तो अपने धनुष के ऊपर बाण भी चढ़ा नहीं पा रहा तब तक उड़ा दे रहे हैं, इतना तीव्र गति से। भगवान ने देखा कि आज पितामह भीष्म ये मेरे भक्त अर्जुन को मार डालेंगे, क्योंकि इन्होंने प्रतिज्ञा लिया मार डालेंगे, इसलिए तुरंत ही भगवान कृष्ण ने क्या किया, तुरंत ही कृष्ण ने अपने रथ को छोड़कर देखा कि अभी मैं बचाऊंगा नहीं इस अर्जुन को, इस पितामह को नहीं रोकूंगा भीष्म को, तो मेरे भक्त अर्जुन को मार डालेगा। तुरंत भगवान ने क्या किया, अपने रथ को छोड़कर नीचे कूदे, और नीचे कूद कर वहां पे एक रथ का टूटे हुए रथ का पहिया पड़ा हुआ था, तुरंत भगवान कृष्ण ने ऊपर उठा लिया और दौड़ पड़े। जैसे वर्णन आता है महाभारत में कि जैसे एक सिंह हाथी के मस्तक को फाड़ने जा रहा है, ऐसे भगवान ने अपने हाथ में चक्र लेकर हाथ दौड़ पड़े, किसके पास, पितामह भीष्म के पास। और जैसे ही भगवान ने और भगवान दौड़ पड़े, उस समय अर्जुन भी रथ से कूद गया और भगवान के चरण पकड़ लिया, प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़िए, मुझे मर जाने दीजिए, अपनी प्रतिज्ञा को मत तोड़िए आप। लेकिन आज अपने भक्त के प्रतिज्ञा की रक्षा करना और अपने इस भक्त के प्राण की रक्षा करने के लिए भगवान ने अपने भी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ डाला, अपनी प्रतिज्ञा। इसलिए कहते हैं प्रबल भक्त के पाले पड़कर प्रभु के नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अपना प्रतिज्ञा लिया थे कृष्ण ने, उस प्रतिज्ञा को तोड़ डाला, किस लिए, एक भक्त ने प्रतिज्ञा भीष्म पितामह लिया उसकी रक्षा करने के लिए, और यहाँ पे अर्जुन के प्राण की रक्षा करने के लिए, दूसरे भक्त अर्जुन प्राण की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया। और जैसे ही टूट पड़े किसके ऊपर, पितामह भीष्म के ऊपर, तुरंत पितामह भीष्म, इसी दिन का मुझे इंतजार था कि कब आप शस्त्र को उठाओगे और मेरे प्राण को खींचोगे और मेरे प्राण को मेरे ऊपर प्रहार करोगे, इसी दिन की रक्षा। सब कुछ छोड़ दिया और पितामह भीष्म खड़े हो गए, और उस समय कृष्ण के बोलने पे अर्जुन ने उनको बाणों से सैया बना दिया। तो इस प्रकार पांडवों के जीवन में एक इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटना कैसे टल गई, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपना समर्पित कर दिया था कृष्ण को, सब कुछ। अब आप सोचो क्या करना है, देखिए कितनी बड़ी ये बात है। ये महाभारत के युद्ध से हमको पता चलता है कि कृष्ण जिनकी रक्षा करने के लिए सोच रहे उसका कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर हमको भगवान भगवान को अपने जीवन में ला देते हैं तो निश्चित रूप से सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। हम भगवान पे विश्वास करते हैं, लेकिन इतना विश्वास पांडवों के जैसा नहीं है, इसलिए हमको बड़ी समस्या होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं सारे चीजें, वास्तव में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब कुछ भगवान कर रहे हैं। और उसी प्रकार से एक गुजरात में कहावत है, गुजराती लोग को मालूम होगा क्या कहावत है, कि एक बहुत बड़ा भार से लदा हुआ बैलगाड़ी जा रहा है, दो बैल खींच रहे हैं, भार लदा हुआ बेचारे बैल बहुत धूप में खींच रहे हैं, और एक कुत्ता आके क्या कर रहा है, वो जो बैलगाड़ी के नीचे ना पहिए के नीचे वो खड़ा होकर चल रहा है, क्योंकि छांव मिल रहा है उसको, चल रहा है। लेकिन कुत्ता चलते चलते क्या सोच रहा है पता है, इतना बड़ा भार मैं ही वजन करके चल रहा हूँ। यही स्थिति हमारी है, हम क्या सोच रहे हैं कि इतना बड़े सब सारे परिवार फैमिली को हम ही पालन कर रहे हैं, अपने आप को पालन करता मानते हैं, इसलिए सारी समस्या है। वास्तव में पालन करने वाले चलाने वाले तो भगवान है, इसलिए उनके ऊपर विश्वास करके जब उनको केंद्र बिंदु में रख के हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम अनेक समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से सत्यव्रत मुनि ने भगवान को अपने मन में बैठाया, भगवान को मन में, क्योंकि उनको पता था कि भगवान को बैठा लिया जिस दिन, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो गया, समझ समस्याओं का समाधान हो गया। तो इस प्रकार से ये अभिलाषा जो बढ़ी किसके अंदर, सत्यव्रत मुनि के अंदर ये अभिलाषा बढ़ी। पहले तो उन्होंने बाल गोपाल रूप को मांगा, फिर माता यशोदा के द्वारा चुंबन किया मुख हमारे मन में बैठ जाए, ये मांगा। अभी क्या मांग रहे हैं, क्योंकि और लालसा बढ़ी तो अब क्या बोल रहे हैं कि आप मुझे दिखो, दर्शन दो, मेरे आंखों के सामने प्रकट हो प्रभु, दर्शन मांग रहे हैं सत्यव्रत मुनि। और ये दर्शन कैसे प्राप्त होगा, तो केवल 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 और नाम मात्र से ही, नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तभी हमको भगवान अपने नेत्रों के सामने वो प्रकट करेंगे अपने आप को, केवल और केवल नाम जप और कीर्तन से ही। वही चीज आज सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं, वास्तव में भगवान के नाम के द्वारा, भगवान के कीर्तन के द्वारा ही हम भगवान को प्रकट कर सकते हैं। मैंने कई पिछले सत्रों में बताया था कि किस प्रकार से जब भगवान ने नारद मुनि ने भगवान को पूछा आप कहां पे रहते हो, तो भगवान ने क्या बोला, जहां पे हमारे भक्त कीर्तन करते हैं, नाम जप करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, मैं वहां पे सदैव उपस्थित रहता हूं। तो नाम जप से यही बात, देखिए गोपियां जब शरद पूर्णिमा के दिन भगवान रासलीला को कर रहे थे गोपियों के साथ, देखिए अभी ये जो रासलीला का बात माइंड में आते ही नहीं, कभी कभी लोगों के अंदर कुछ अलग प्रकार के विचारधाराएं शुरू होती है। मैं ये बता दूं पहले आपको कि जब ये भगवान ने रासलीला किया था तो उनका एज कितना था पता है, 7 साल के थे जब ये भगवान ने रासलीला किया था गोपियों के साथ। तो जब ये गोपियों को ये अहंकार हुआ कि कृष्ण मेरे साथ है, क्योंकि सबके साथ थे कृष्ण, सबके साथ है, जब ये अहंकार हुआ तो कृष्ण क्या किए, अप्रकट हो गए। उस समय गोपियों ने बहुत सुंदर से बात को अपने गोपी गीत में बताते हैं, क्योंकि वो गीत को गाना प्रारंभ किए, कीर्तन करना प्रारंभ किए, क्यों, क्योंकि अभी भगवान अप्रकट हो गए हैं। तो भगवान को प्रकट करना है तो क्या करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, नाम का जप करना पड़ेगा, उनके कथा का श्रवण करना पड़ेगा या कथा का गायन करना पड़ेगा। जब हम ऐसा करते तो भगवान प्रकट होते हैं। वही सत्यव्रत मुनि आज के श्लोक में वो नाम का कीर्तन करने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी भगवान को प्रकट करना अपने आंखों के सामने। तो गोपियों ने बहुत सुंदर सा गोपी गीत वहां पे गाते हुए कहते हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदाजनम्। गोपियां कृष्ण को खोजते हुए उस अंधेरी रात, शरद रात्रि के समय, शरद पूर्णिमा के दिन ढूंढते ढूंढते वो कहते हैं कि तव कथामृतम, है प्रभु आपका जो ये कथा है ना अमृत के समान है, तव कथामृतम ये अमृत के समान है। और ये अमृत कैसा, तप्त जीवनम, जो व्यक्ति तप रहा है इस संसार में, दुख को प्राप्त हुआ है, उस दुख को शमन करने वाला अमृत के समान है। जो कोई भी इस कथा का गायन करता है, श्रवण करता है, उसको अमृत की प्राप्ति होती है। या तो उसके जीवन में जो तप्त जीवन है, उसका जीवन जो तप रहा है, उसका जीवन सुखमय बन जाएगा अगर वो कथाओं का आपका कीर्तन करता है। तो इस प्रकार से गोपियां जो है भगवान को प्रसन्न किया, भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हो गए केवल केवल कीर्तन करने से। गोपियों ने कीर्तन किया तो वापस भगवान प्रकट हो गए। तो यही बात वास्तव में अनेक पुराणों में इस बात की संस्कृति है, कहते हैं कि जब तक हम भगवान का नाम का कीर्तन नहीं करते हैं तब तक भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं होते हैं। ಹರೇರ್ನಾಮ 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 ಇವ ಕೇವಲಂ ಕಲವ ನಾಸ್ತಿವ 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 ಗತಿರನ್ಯಥ. ಇಸ್ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಪ್ರಕಟ ಕರ್ನಾ ಹೈ ತೋ ಔರ್ ಕೋಯಿ ಉಪಾಯ ನಹೀ ಹೈ. ಹರೇ ಕೇವಲ ಹರೇರ್ನಾಮ 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 ಇವ ಕೇವಲಂ ಕೇವಲ ಔರ್ ಕೇವಲ ಹರಿ ಕಾ ನಾಮ ಹರಿ ಕಾ ನಾಮ ಹರಿ ಕಾ ನಾಮ ತೀನ್ ಬಾರ್ ಜೋರ್ ದೇ ಕೇ ಬೋಲಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಕೋರ್ಟ್ ಮೇ ಆರ್ಡರ್ 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 ತೀನ್ ಬಾರ್ ಜೋರ್ ದೇಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮೇ ಬತಾಯಾ ಗಯಾ ಕೇವಲ ಔರ್ ಕೇವಲ ಹರಿ ಕಾ ನಾಮ ಹರಿ ಕಾ ನಾಮ ಹರಿ ಕಾ ನಾಮ ಹೀ. ಔರ್ ಇಸ್ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ಕಲೋ ನಾಸ್ತೇವ 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 ಕೋಯಿ ಉಪಾಯ ನಹೀ ಕೋಯಿ ಉಪಾಯ ನಹೀ ಕೋಯಿ ಉಪಾಯ ನಹೀ ಹೈ ಇಸ್ ಕಲಿಯುಗ ಮೇ ಪ್ರಕಟ ಕರ್ನೆಕೆ ಲಿಯೆ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಕೇವಲ ಔರ್ ಕೇವಲ ಹರಿ ಕಾ ನಾಮ. ಯಹಿ ಬಾತ್ ಆಜ್ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿ ಆಜ್ ಕೇ ಇಸ್ ಅಷ್ಟಕಂ ಕೇ ಛಠೇ ಶ್ಲೋಕ ಮೇ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ನಾಮ ಕೇ ದ್ವಾರಾ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ವೋ ಭಗವಾನ್ ಕೋ ಅಪ್ನೆ ಆಂಖೋ ಕೇ ಸಾಮ್ನೆ ಪ್ರಕಟ ಕರ್ನಾ ಚಾಹ ರಹೇ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಕಹತೆ ಹೈ ನಮೋ ದೇವ ದಾಮೋದರ ಅನಂತ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ದುಃಖ ಜಾಲಾದಿ ಮಗ್ನಂ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿ ಬೇಷ್ಟಾತಿ ದಿನಂ ಬತಾನು ಗೃಹಾನಿ ಶಮಾಮೇಗ್ಯ ಮೇಧಚಿ ದೇಶ್ಯ. ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ನಾ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಿಯೆ ಕಿಸ್ ಉದ್ದೇಶ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಹಮಾರೆ ಆಂಖೋ ಕೇ ಸಾಮ್ನೆ ಪ್ರಕಟ ಹೋ ಜಾಯೆ. ಕಹತೆ ನಮೋ ದೇವ ದಾಮೋದರ ಅನಂತ ವಿಷ್ಣು ಹೇ ದಾಮೋದರ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ನಾಮ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರೆ ಕಿ ಹೇ ದಾಮೋದರ್ ಹೇ ವಿಷ್ಣು ಆಪ್ ಮೇರೆ ಇಸ್ ದೃಷ್ಟಿ ಕೇ ಸಾಮ್ನೆ ಪ್ರಕಟ ಹೋ ಜಾಯೆ ಯೇ ಮೇರಿ ಅಭಿಲಾಷಾ ಹೈ. ಯಹಾಂ ಪೇ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ನಾಮ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ತೆ ಹುಯೇ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಹೇ ದಾಮೋದರ್ ದಾಮೋದರ್ ಮತಲಬ್ ದಾಮ ಮತಲಬ್ ರಸ್ಸಿ ಔರ್ ಉದರ್ ಮತಲಬ್ ಪೇಟ್ ಜಿನ್ಕಾ ಉದರ್ ರಸ್ಸಿ ಸೇ ಬಂಧಾ ಹುವಾ ಹೈ ಉಸ್ಕೋ ಕ್ಯಾ ಕಹತೆ ಹೈ ದಾಮೋದರ್. ದಾಮೋದರ್ ಕೆ ಏಕ್ ಹೀ ಅರ್ಥ ನಹೀ ಹೈ ಕೇವಲ್ ಔರ್ ಭೀ ಅರ್ಥ ಹೈ. ದಾಮೋದರ್ ಏಕ್ ತೋ ಜೋ ಮೈಯಾ ಯಶೋದಾ ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಬಾಂಧಾ ಹುವಾ ಹೈ ರಸ್ಸಿ ಸೇ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಉನ್ಕಾ ನಾಮ ಪಡಾ ದಾಮೋದರ್. ಕೇವಲ ಮೈಯಾ ಯಶೋದಾ ನೆ ಹೀ ಬಾಂಧಾ ಹೈ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೇ ಇನ್ ಗೋಪಿಯೋ ನೆ ಭೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಬಾಂಧಾ ಹೈ. ಜಬ್ ಈ ಗೋಪಿಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಢೂಂಡತೆ 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 ಜಬ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಕಟ ಹುಯೇ ಜಬ್ ಗೀತ ಕಾ ಗಾಯನ್ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ಕೀರ್ತನ ಕರ್ತೆ ಕರ್ತೆ ಜಬ್ ಭಗವಾನ್ ಪ್ರಕಟ ಹುಯೇ ತೋ ಗೋಪಿಯಾ ಕ್ಯಾ ಕಿ ಅಭಿ ಅಪ್ರಕಟ ನಹೀ ಹೋ ಕರ್ಕೆ ಉನ್ಹೋನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಕೆ ಚುನರಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಉನ್ಕೋ ಉನ್ಕೆ ಪಿತಾಂಬರ್ ಕೋ ಬಾಂಧ ದಿಯಾ ಕಿ ಅಭಿ ಆಪ್ ಕಹೀ ಔರ್ ಜಾಯಿಯೇಗಾ ಮತ್ ಭಾಗನೆ ನಹೀ ದೇನಾ ಹೈ. ತೋ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ತೆ ಅಭಿ ಗಾತೆ ಹೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಬೋಲ್ತೆ ಹೈ ಜಯ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ. ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ್ ಕ್ಯೂ ಬೋಲ್ತಾ ಯಶೋದಾ ಮೈಯಾ ನೆ ಬೋಲಾ ತಾ ಯಶೋದಾ ದಾಮೋದರ್ ಬೋಲ್ತಾ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ್ ಕ್ಯೂ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಈ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ನೆ ಭೀ ಬಾಂಧಾ ತಾ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ. ಉಸ್ ಸಮಯ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ ವೃಂದಾವನ್ ಮೇ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಹೈ ದಾಖೋಲಿ ಕರ್ಕೆ ಗಾಂವ್ ಹೈ ವಹಾಂ ಪೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಸೀ ಪ್ರಕಾರ ಸೇ ಕಭಿ ಭೀ ಅಪ್ರಕಟ್ ಹೋ ಜಾತೆ ಥೆ ಕಭಿ ಭೀ ಚಲೇ ಜಾತೆ ಥೆ. ತೋ ಸಖಿಯೋ ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಕಿ ಅಭಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಬಾಂಧ ಕೆ ಹಮ್ ಝೂಲೇ ಪರ ರಖತೆ ಹೈ ಬಾಂಧ ಕೆ ರಖೆಂಗೆ ಇಸ್ಕೋ ಭಾಗನೆ ನಹೀ ದೇಂಗೆ. ತೋ ಗೋಪಿಯೋ ನೆ ಕ್ಯಾ ಕಿಯಾ ಬಹುತ್ ಸಾರೆ ರಸ್ಸಿಯೋ ಕೇ ಲೇಕರ್ ಆಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಬಾಂಧನೆ ಕಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕಿಯಾ ಲೇಕಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬದೇ ನಹೀ ಜೈಸೆ ಮೈಯಾ ಯಶೋದಾ ನೆ ಕಿಯಾ ನಹೀ ಬದ ರಹೇ. ಲೇಕಿನ್ ಜಬ್ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಕೆ ಪಾಸ್ ಪಹುಂಚಾ ಕಿ ಗೋಪಿಯೋ ನೆ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಇತನಾ ಪ್ರಯಾಸ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಲೇಕಿನ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಧೆ ನಹೀ ಉನ್ಕೋ ಕೌನ್ ಬಾಂಧ ಸಕ್ತಾ ಹೈ. ಜಬ್ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಕೋ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ತಾ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ನೆ ಅಪನೇ ಘರ್ ಸೇ ಏಕ ರಸ್ಸಿ ದಿಯಾ ಬೋಲಾ ಏ ರಸ್ಸಿ ಲೇಕೆ ಜಾವ ಪಕ್ಕಾ ಬಧ ಜಾಯೆಂಗೆ. ಜಬ್ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ನೆ ಓ ರಸ್ಸಿ ದಿಯಾ ಔರ್ ಓ ಗೋಪಿಯಾ ಜಬ್ ಈ ಲೇಕೆ ಗಯಿ ದಾಮೋದರ್ ಕೆ ಪಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೆ ಪಾಸ್ ತೋ ಕೃಷ್ಣ ಉಸ್ ರಸ್ಸಿ ಕೋ ದೇಖತೆ ಹೀ ವೋ ಸಮಝ ಗಯೆ ಕಿ ರಾಧಾ ರಾಣಿ ಕೆ ದಿಯಾ ಹುವಾ ರಸ್ಸಿ ಹೈ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಉನ್ಹೋನೆ ತುರಂತ ಬಧ ಗಯೆ ತುರಂತ ಬಧ ಗಯೆ. ತೋ ಗೋಪಿಯೋ ನೆ ಭೀ ಕೃಷ್ಣ ಕೋ ಬಾಂಧಾ ಥಾ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಹಮ್ ಕಹತೆ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ್ ಕೇವಲ ಯಶೋದಾ ದಾಮೋದರ್ ನಹೀ ರಾಧಾ ದಾಮೋದರ್ ಭೀ ಹೈ. ತೋ ಯಹಿ ಬಾತ್ ಉಚ್ಚಾರಣ ಕರ ರಹೇ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ನಮೋ ದೇವ ದಾಮೋದರ ಯೇ ಮೈ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಕಿಸ್ಕೋ ದಾಮೋದರ್ ಕೋ ಜೋ ಕಿ ವಿಷ್ಣು ಉನ್ಕೋ ಪ್ರಣಾಮ ಕರ್ತಾ ಹೂಂ ಔರ್ ವಿಶೇಷ ಕರ್ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಪ್ರಸೀದ ಪ್ರಭೋ ದುಃಖ ಜಾಲಾಬ್ಧಿ ಮಗ್ನಂ. ಬಹುತ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಬಾತ್ ಕೋ ಬತಾತೆ ಯಹಾಂ ಪೇ ಸತ್ಯವ್ರತ ಮುನಿ ಕಿ ದುಃಖ ಜಾಲಾಬ್ಧಿ ಮಗ್ನಂ ಮೈ ಕ್ಯಾ ಹೋ ರಹಾ ಹೂಂ ಮೈ ಇಸ್ ಸಂಸಾರ ಕೆ ಅನೇಕ ದುಃಖೋ ಸೇ ಗ್ರಸಿತ ಹೂಂ ಪ್ರಭೋ. ಮೇರೆ ಜೀವನ ಮೇ ದುಃಖ ಹೀ ದುಃಖ ಹೈ ಹೈ ನಾ ಹಮ್ ಭೀ ದುಃಖಿ ಹೈ ನಾ ಸಬ್ ಲೋಗ್ ದುಃಖಿ ಹೈ ಕೋಯಿ ಸುಖಿ ಹೈ ಸಬ್ ದುಃಖಿ ಹೈ ಸಬ್ ದುಃಖಿ ಹೈ ಸುಖಿ ಹೈ ಸುಖಿ ಹೈ तो जो जो ये बोल रहा है कि मैं सुखी हूं, वो भी एक दुख का कारण है इस संसार में. क्योंकि आपके सुखी, हम सुखी, तो चार लोग दुखी होते हैं. वो भी एक दुख है. तो इस संसार में सुख है ही नहीं. यही सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि प्रभु ये मैं जो है ना दुख से ग्रसित हूं. दुख जालाब दिमग्नम, संसार को सागर बताया गया है. इस सागर के समान है संसार, बहुत बड़ा विशाल सागर के समान है. और कैसा सागर है? दुखों का सागर है, दुख का सागर है. इसको पार पाना बहुत कठिन है. एक दुख रूपी जो सागर है ना संसार का, इसको पार पाना बहुत कठिन है. इसकी पुष्टि भगवान भगवद गीता में करते हैं. भगवान कहते हैं कि माया, क्या कहते हैं श्लोक, दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्तया. भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये जो माया, जो ये सागर है, दुखों का सागर है संसार में ना, इसको पार पाना बहुत कठिन है. भगवान ये बता रहे हैं, ये दुखालय में शाश्वतम है. भगवान स्टैंप मार रहे हैं इस संसार के ऊपर. संसार को बनाने वाला क्या कर दिया? स्टैंप मार दिया. क्या स्टैंप मारा? दुखालय में शाश्वतम. तो इस संसार में सुख मिल ही नहीं सकता कभी. इसलिए सत्यव्रत मुनि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये संसार जो है दुखों का सागर है, और इसी दुख जो है मुझे बहुत तड़पा रहा है, सता रहा है. दुख जालाब दिमग्नम, ये दुख में मैं बहुत ग्रसित हूं इस संसार के दुख के कारण. और भगवान भगवद गीता में कहते हैं दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्तया, ये जो माया है मेरी, माया शक्ति, इसको पार पाना बहुत ही मुश्किल है. फिर कैसे पार पाएंगे उनको? तो भगवान भगवद गीता में ही कहते हैं कि मामे वे प्रबद्धन्ते माया मेता तरमतिते. जो कोई मेरी शरण ग्रहण कर लिया और मेरे नाम का कीर्तन किया, मेरे नाम का जप कर लिया, तो उसके लिए जो संसार है, इतना बड़ा दुख का सागर है ना, वो एक छोटा से, आपने देखा है कि गाय का जो बछड़ा होता है, और जब बारिश के समय में जब चलता है तो उसके खुर का निशान पड़ जाता है. खुर का निशान, मिट्टी में खुर का निशान पड़ जाता है. और बारिश का जल उस खुर के निशान में जो गड्ढा बना रहता है, उसमें वो बारिश का जल भर जाता है. तो भगवान कहते हैं कि मामेव ये प्रबद्धन्ते माया मेता तरमतिते. इस संसार के दुख को पार पाना है, सागर को पार पाना है, तो अगर मेरी शरण ग्रहण करोगे तो वो संसार, इतना बड़ा जो सागर दुखों का, वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि वो बछड़े के खुर में जल है, उसको कितने आसानी से हम लांग सकते हैं. वो इस प्रकार का हो जाएगा, बहुत थोड़ा सा हो जाएगा अगर नाम की शरण ग्रहण करते हैं तो. तो इसलिए सत्यव्रत मुनि यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताते हैं. कहते हैं कि हे प्रभो, प्रसिद्ध प्रभो, हे प्रभो, दुख जालाब दिमग्नम, मैं ये संसार रूपी जो दुख से जल रहा हूं, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, लेकिन आप मेरे पर कृपा करिए ताकि ये जो संसार रूपी जो दुख है मेरे अंदर, वो चला जाए और आपका मैं दर्शन कर पाऊं. आप मेरे ऊपर कृपा करिए. तो इस प्रकार से वास्तव में अगर हम भगवान हमारे जीवन में आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि संसार के सारे अमंगल जो है, जितने भी अमंगल है, पाप है या दुख है, उस सबसे मुक्त हो जाते हैं हम. सत्यव्रत मुनि ये बहुत बड़े सिद्धांतों को यहाँ पे बता रहे हैं, जो कि हमारे लिए, हम भक्तों के, हम सबकी के लिए बहुत फल देने वाला सिद्धांत है. कि वो प्रार्थना कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति में कि मेरे अंदर दुख ही दुख भरा हुआ है. हालांकि सत्यव्रत मुनि के अंदर दुख भरा नहीं है, दुख भरा रहता था, लीला दर्शन नहीं करते, इतना सुंदर अष्टकम का गायन नहीं करते. वो हमारे लिए, हमको इंगित कर रहे हैं कि हम सभी दुख से तड़प रहे हैं, इस संसार रूपी सागर में डूब रहे हैं, गोता लगा रहे हैं, लेकिन सुख की प्राप्ति नहीं हो रहा है. सुख की प्राप्ति तभी होगा जब भगवान कृपा करेंगे, हम उनसे कृपा याचना करेंगे, जब वो हमारे सामने प्रकट होंगे, तब जाके ये जो दुख है, दुख रूपी सागर से हम आसानी से पार कर सकते हैं. इस बात को सत्यव्रत मुनि आज के श्लोक में व्यक्त करके कि हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, आप मेरे आंखों के सामने प्रकट होइए. क्योंकि जब तक आप आंखों के सामने प्रकट नहीं होंगे, तब तक मेरा ये जो दुख है वो जाएगा नहीं. इसलिए आप मेरे आंखों के सामने प्रकट होइए. देखिए, वास्तव में सार यही है कि जीवन रूपी जो यात्रा हम कर रहे हैं, जीवन रूपी यात्रा, इसको मंगलमय बनाना है तो एकमात्र केवल भगवान का नाम ही सहारा है, दूसरा और कोई सहारा नहीं है. एकमात्र, देखिए, हम यात्रा पे, जैसे कि हम संसार में यात्रा करते हैं, है ना, कहीं भी जाते, मान लीजिए वापिस से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं, वापिस से दिल्ली की यात्रा कर रहे हैं तो सब लोग यही चाहते हैं कि हमारी यात्रा मंगलमय हो। हम स्टेशन पर खड़े हो जाते हैं, अनाउंस में भी होता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, है ना, अनाउंस भी होता है स्टेशन पे आपकी यात्रा मंगलमय। तो मेरा प्रश्न एक है कि यात्रा मंगलमय कब होता है, कोई बताए यात्रा मंगलमय कब होता है? जो यात्रा हम करने जा रहे हैं वापिस से दिल्ली, वो यात्रा मंगलमय कब बनता है? क्योंकि सब लोग शुभकामनाएं देते हैं, हैप्पी जर्नी मैसेज भी करते हैं, हैप्पी जर्नी। स्टेशन पे जाए तो वो भी बोलने से छोड़ता नहीं है मंगलमय यात्रा हो आपकी। तो मेरा प्रश्न यह है कि यात्रा मंगलमय कब होता है? तीन परिस्थितियों में यात्रा मंगलमय माना जाता है। तीन परिस्थितियां ध्यान से सुनिए, हमारा यात्रा मंगलमय कब होता है? तीन परिस्थितियों में होता है। एक तो हम वापिस से दिल्ली के लिए बैठा है तो सबसे पहले वो सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा है। भारत के ट्रेन का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी लाइन खराब तो किसी और स्टेशन पे उतारेगी। तो सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा है, मतलब हम दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली ही पहुंचा है फर्स्ट, ठीक है, ये होगा तभी सही मंगलमय यात्रा माना जाएगा ना। दूसरा हमारा यात्रा मंगलमय कब माना जाएगा? कि टाइम टू टाइम पहुंचा है। टाइम टू टाइम नहीं पहुंचा है, 12 घंटा लेट पहुंचा है तो मंगलमय माना जाएगा नहीं ना, टाइम से पहुंचना चाहिए, जो टाइम दिया गया वो टाइम पे पहुंचाना चाहिए। और तीसरा कि वापिस दिल्ली के यात्रा में बीच में कोई कष्ट न आए, कोई दुख ना आए, कोई समस्या ना हो, तभी मंगल। इन तीन परिस्थितियों में यात्रा मंगलमय माना जाता है। पहला क्या, सही डेस्टिनेशन पे पहुंचाए, दूसरा टाइम टू टाइम पहुंचाए, और तीसरा दुख उस बीच में जो जर्नी है जो यात्रा कर रहे हैं उसके बीच में कोई समस्या ना हो, दुख ना हो, एक्सीडेंट ना हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये तीन परिस्थितियों में यात्रा मंगलमय माना जाता है। इसी प्रकार से ये हमारा जो जीवन है ना, ये जीवन भी हमारा एक यात्रा के समान है। अभी हमने किया ना जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, आत्म अन्वेषण की यात्रा। ये जीवन भी हम भी एक यात्रा पे चले हुए हैं। ये जीवन हमारा एक यात्रा के समान है। तो ये जीवन यात्रा भी तब मंगलमय माना जाएगा जब तीन चीजें होगा, ध्यान से सुनेगा। हम ये जो जीवन रूपी यात्रा पे चले हैं, 84 लाख योनियां हैं, भ्रमण करते करते एक ऐसे स्थान पे पहुंचे हुए हम, वो कौन सा स्थान है, एक जंक्शन पे पहुंचे हैं। कौन सा जंक्शन? देखिए 84 लाख योनियां, बहुत सारे स्टेशन, जैसे वापिस से दिल्ली गए तो बहुत सारे स्टेशन आएंगे, तो 84 लाख योनियां ना वो सारा स्टेशन है। और एक जंक्शन पे हम जो खड़े हैं वो कौन सा जंक्शन है, मनुष्य रूपी शरीर प्राप्त किए जंक्शन पे हम खड़े हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मनुष्य रूपी जो शरीर है ना, एक जंक्शन के समान है, क्योंकि वहां पे वो व्यक्ति खड़ा है, अभी उसके पास च्वाइस है कि वो कुत्ता बनना चाहता है, गधा बनना चाहता है, या सही जगह पे जाना चाहता है। उसके पास ये च्वाइस है, क्योंकि मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ जीवन बताया गया है 84 लाख योनियों में से। और वो जीवन इसलिए प्राप्त होता है घूमते घूमते कि उस जीवन के अहम महत्व को समझे, कि हमें शरीर नहीं आत्मा है, और परमात्मा की सेवा करे, भगवान की सेवा करे, और वो सही डेस्टिनेशन पे अपने पहुंचे, एक मौका दिया गया है। तो जंक्शन पे वो मनुष्य शरीर, हमारा जीवन रूपी यात्रा जो है ना, हम इस मनुष्य शरीर को लेकर एक जंक्शन पे खड़े हैं, 84 लाख योनियां स्टेशन के समान। उसी प्रकार जैसे हमारा यात्रा मंगलमय तब माना जाता है तीन परिस्थितियों में, उसी प्रकार एक जीवन रूपी यात्रा हमारा मंगलमय तब माना जाता है, सबसे पहला क्या, सही डेस्टिनेशन पर पहुंचाए हमको, मतलब ये जो हमको शरीर प्राप्त हुआ है इसका सही यूटिलाइज करके अगर हम सही डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, वैकुंठ धाम जाते हैं, तो सही यात्रा माना जाता है। पहला कि सही डेस्टिनेशन पर पहुंचे भगवान के धाम। दूसरा टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम, ऐसा नहीं कि 20 जन्म के बाद मिले, इसी जन्म में हम भगवत धाम भगवत प्राप्ति करें, उसको टाइम टू टाइम बोलते हैं। टाइम टू टाइम प्राप्त कर ले वो सही मंगलमय यात्रा होता है। और तीसरा कोई कष्ट ना हो, मतलब हम जो ये भक्ति रूपी अभी कार्य कर रहे हैं, जो भी सब लोग एकत्रित होकर पिछले 10 दिनों से कर रहे हैं, 10 दिन हो गए, हम 11 तारीख से शुरू किए, 11 तारीख से शुरू किया और कंटिन्यू चल रहा है, आज कितना तारीख है, 23 तारीख है, कितना हो गया, लगभग 12 दिनों से हम इस प्रकार का कर रहे हैं। तो ये सारे जो भक्ति के क्रियाकलाप करते समय कोई भी क्लेश ना आए, कष्ट ना आए, तब ये जीवन रूपी यात्रा जो है मंगलमय हो जाता है। और ये तीनों परिस्थितियां तभी होगी हमारे जीवन में, कि हम सही टाइम पे इसी जन्म में भगवत धाम पहुंचे, डेस्टिनेशन जो हमारा, और दूसरा कष्ट ना आए। तभी संभव हो सकता है जब हम हरिनाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तभी संभव हो सकता है, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के इस श्लोक में यही सत्यव्रत मुनि बहुत सुंदर सा इस बात को बताते हैं कि प्रभु हमारे, मैं जो दुख से ग्रसित हूँ, इसको आप मेरे नेत्रों के सामने जो प्रकट होकर इसको दूर करिए, आप मुझे दर्शन दीजिए। तो मानो कृष्ण ऐसा कहे, ऐसा कभी हुआ है क्या, दर्शन दूं आपके सामने? ठीक, आपने मन में बोला, मैं मन में प्रकट हो गया, वर मांगा कि गोपाल बाल रूप मेरे मन में बैठ जाए, उसके बाद बोला कि चलो मैया यशोदा के द्वारा चुंबित ए मुखारविंद हमारे मन में आ जाओ, वो भी दे दिया, अभी बोल रहे मेरे आंखों के सामने प्रकट हो जाओ, ये कभी हुआ है क्या, ऐसा कभी होता है क्या? तो सत्यव्रत मुनि बोलते प्रभु हुआ है और होता है, और ये बताएंगे सत्यव्रत मुनि कल के श्लोक में कि कैसे हुआ है। तो हम एपिसोड 7 कल के श्लोक में हम देखेंगे कि किस प्रकार से सत्यव्रत मुनि बता रहे कि आप प्रकट हुए हो, भगवान आप प्रकट हुए हैं भक्तों के नेत्रों के सामने, तो उदाहरण देते हुए कल हो भगवान के इस अष्टकम को आगे बढ़ाएंगे। तो कल हम इसका श्रवण वापस किसके घर पे करेंगे,
401
दामन के घर पे, दामन के घर पे। देखो हाथ भी उठा लिया है, वाह, दामन दमन, जब दमन बोलता तो बोलता मेरा नाम दमन नहीं है अभी, दाम ठीक है। तो आइए हम अष्टकम का पाठ करते हैं, पाठ करके दामोदर को दीपदान करेंगे। आ जाओ कृष्णा, आ जाओ, आगे आ जाओ, आज मैं गाता हूँ। हम रोज एक ही टोन गाते थे, आज थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, देखते हैं, मैं भी ट्राई करता हूँ गा पाता हूँ कि नहीं, शायद थोड़ा तकलीफ भी हो सकता है क्योंकि पता नहीं सेट होगा कि नहीं होगा। नमामिश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानं, नमामिश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले ब्राजमानं, यशोदाभियो लोकालाधवमानं, यशोदा नहीं सेट हो रहा है, ठीक है, दूसरा ही ज्यादा खींचना पड़ता है फिर सब परेशान हो जाएंगे। अभी वो भूल रहा हूँ, याद तो दिलाओ। नमामिश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम्, लसत्कुण्डलं गोकुले व्राजमानम्, यशोदाभियो लोकलाधवमानं परामिशमत्यन्त दोद्रुत्य गोप्या, लाधवमानं परामिशमत्यन्त दोद्रुत्य गोप्या, रुदन्तं मोहुर्नेत्रयुग्मं ऋजन्तं कराम्भुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम्, रुदन्त
तम करा युग में ओ श्वास कंप तेरे कांक कंठ सितग्रैव दामोदरम भक्ति वदम तेरे कांक कंठ सितग्रैव दामोदरम प्रीति दीक्षा लीला भीर आनंद कुंडे स्वघोषम निमंजंत माख्य पयंतम कुंडे स्वघोषम निमंजंत माख्य पयंतम तदीयेषु तज्ञेषु भक्तजितत्वम् पुनः प्रेमतस्तम् तथा वृत्ति वन्दे प्रेमतस्तृतिबन्धे वरं देव मोक्षं न मुक्षवदिं वा न चान्यं मृडेऽहं वरे साधप्रिय मोक्षवदिं वा न चान्यं मृडेऽहं वरे साधप्रिय इदं देव पुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्याभिरास्तं कि मने गोपाल बालम सदा मे मनस्याभिरास्तं कि मने इदं ते मुखाम्बोज अत्यंत नीले वृत्तं कुंडले स्निग्ध रक्तस्य गोप्या कुंतले स्निग्ध रक्तस्य गोप्या मोचुम्बितं बिम्ब रक्तधरम्बे मनस्य विरासामलं लक्ष्य लाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जाला विमग्नम प्रसीद प्रभो दुख जाला विमग्नम कृपा दृष्टि विज्ञाते दिनं वतानु हानि क्षमा मेद्य मेद्यशिदेश दिनं बतानो हानि क्षमा मेद्य मेद्यशिदेश कुबेरात्मा जगत मूर्ते वयद त्वया मुदित भक्ति भाज कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकामे प्रयच समुद्धि देवो मे श्रीदामोदरे नमस्ते सुदामे पुरदिति दामे उदरायात विश्वस्य धामे उदरायात नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय 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 चालू करो नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय पंखा बंद कर दीजिए लाइट भी बंद कर दीजिए सबको जिंदा चालू कराए नमो रंत लीलाय देवाय तो ब्रह्म नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाय नमो राधिकाए त्वदीय प्रियाय नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यम नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
चालू करे
हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे
बोलो उधर किया रखे
इधर आ
हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 Krishna Krishna Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare
Hare Krishna Krishna
Krishna Hare Ramo Hare Ramo 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 Jayo Radha Damodar Radhe
Radhe
Jayo Radha Damodar Radha Damodar Radhe Jayo Radha Damodar Radha Damodar Radhe Jaya Yashoda Damodar Jaya Yashoda Damodar Jaya Yashoda Damodar Jaya Radha Madhav Radha Madhav Radha Jaya Radha Madhav Radha Jayo Radha Govinda Radha Govinda Radha Jayo Radha Govinda Radha Govinda Radha Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Prabhupada
प्रभुपादे की जय श्री राधा दामोदर की जय सुधा दामोदर की जय देवदान उत्सव प्रोग्राम की जय आज के आनंद की जय श्री प्रभुपादे की जय हरे कृष्णा हाँ जी
कोई जाएगा नहीं महाप्रसाद सब लेके जाएगा
हाँ सभी के लिए महाप्रसाद है सब लोग महाप्रसाद पाके ही जाएंगे
कोई जाए नहीं
सब लोग के लिए है सब रुकिएगा तो कल कौन से जगह पे
कल ए ए बिल्डिंग ए 400